वर्धमान महान जिन पिछले हमारे ध्यान चालू नहीं है क्या? समय सार परमागम आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले किसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया, इसका आश्रव अधिकार चलेगा। आपके हाथ में समय सार है तो उसका पेज नंबर 274 और यदि अनुशीलन है तो उसका पेज नंबर 48। समय सार अनुशीलन भाग 3 पेज नंबर 48। ये वही है कि उस शिविर में जो प्रकरण चला था और उसके बाद भी अपन प्रवचन करते रहे थे, जब तक जयपुर में रहे तब तक, वहां तक जो समय खत्म हो गया था और उसके बाद यहां से शुरू हो रहा है इसी पॉइंट से। इसलिए मैं आपको 5 मिनट में आश्रव अधिकार की पूर्व भूमिका थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि जो लोग उस वक्त नहीं थे उन्हें कुछ आइडिया नहीं होगा। आश्रव अधिकार में हम समझते हैं कि आश्रव का स्वरूप बताना चाहिए और आश्रव के भेदाभेद बताना चाहिए। 5 प्रकार का होता है, उसके अवान्तर भेद 57 होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, क्या फल है, कैसी प्रक्रिया है, लेकिन वो बात यहाँ कुछ नहीं करके यहाँ पर तो सीधी ये बात करते हैं कि ज्ञानी जीवों को आश्रव नहीं होता है और अज्ञानियों को होता है। अब किसे होता है और क्या नहीं होता है ये तो बाद में बताने की बात थी ना, पहले तो ये तो बताते कि आश्रव किसे कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई हमारे पास प्राथमिक शिष्य नहीं है, जो पंचास्तिक आए प्रवचनसार और ग्रंथ पढ़ के आए हैं वो लोग हैं, वो आश्रव के भेदों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम उनसे वो बात नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आश्रव जो जो आश्रव भाव हैं वो ज्ञानियों के नहीं होते और अज्ञानियों के होते हैं, है ना। फिर तो कहा कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसकी उन्होंने प्रक्रिया में बात समझाई थी और ये कहा था कि कर्म भी बंध के कारण नहीं है और आत्मा भी ज्ञानी सम्मत दृष्टि को बंध होता ही नहीं, आत्मा भी बंध का कारण नहीं है। अब नहीं है तो फिर बंध होता तो है कहाँ होता है, ज्ञानियों के तो नहीं होता है, समझे ना। तो उन्होंने बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि हमारे कर्म में 3 अवस्थाएं होती हैं, बंध, सत्व और उदय। अभी छोटी सी प्रक्रिया है कि पहले कर्म आकर बनते हैं, बनते का मतलब ये होता है कि कर्माएं बढ़ रहे हैं तो लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, यहां भी भरी जहां अपना आत्मा है, और लेकिन हमारे आत्मा के मोहराग देश परिणामों का निमित्त पाकर वो हमारे आत्मा से वे कर्म रूप परिणमित होती हैं, उनका नाम है प्रदेश बंध, है ना। वे प्रदेश बंध होता है कर्म के, तो वो तो हमारे योग के निमित्त से होता है, आत्मा के प्रदेशों में जो परस्पंद होता है उसे योग बोलते हैं। मन के निमित्त से हो तो मन योग, वचन के निमित्त से हो तो वचन योग, काय के योग से निमित्त से हो तो काय योग। उसकी वजह से वो कर्मान वर्णाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। कर्मान वर्णाएं वो पुद्गल के स्कंद हैं, जो और थोड़े पीछे चलते हैं, 23 प्रकार के पुद्गल हैं इस दुनिया में, एक अणु और 22 प्रकार के स्कंद। वो 22 प्रकार के स्कंदों में 5 प्रकार के स्कंद जीव से संबंधित होते हैं। तो एक परमाणु और 22 में से 5 गए तो कितने 17 बचे। 17 से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और उनमें होता है आहार बढ़ना, तेजस बढ़ना, कालमान बढ़ना, मनो बढ़ना और भाषा बढ़ना। आहार बढ़ना से शरीर वगैरह बनता है, भाषा बढ़ना से भाषा बनती है, मनो बढ़ना से मन बनता है, कालमान बढ़ना से कालमान शरीर बनता है और तेजस बढ़ना से तेजस शरीर बनता है। ख्याल में है ना। तो जो कालमान बढ़ना रूप स्कंध है वे सिद्धशिला में निगोद से लेकर सिद्धशिला तक तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। कहीं कमी नहीं है, कहीं से आने की जरूरत नहीं है, कहीं से कर्म आएंगे और वो तुमसे चेट जाएंगे जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों के कंपन के है उनमें निमित्त, और वे कारमान बगणाएं अपने आप कर्म रूप परिणमित होती हैं। वो वहां हैं, वे भी हो सकती हैं और कहीं दूर से आके भी हो सकती हैं। उसमें आपका कोई भी कर्तृत्व तो नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हमें नहीं बांधना तो हम नहीं आने दें कि बांधना है तो हम ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम माने आना होता है लेकिन आने जाने की कोई खास बात नहीं है। अब फिर उनमें बंटवारा होता है, जो 71 लोट आ गया इसको शास्त्रीय भाषा में समय प्रबद्ध प्रमाण कहते हैं। कितना होता है समझ लो, 1 किलो होता है वो, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में क्या है, समय प्रबद्ध प्रमाण। इतना इतना लोट होता है तो उसमें कितने ज्ञानावर्ण को मिलेंगे, कितना दशमावर्ण को, कितना ऐसा बंटवारा होता है प्रकृतियों में। तो एक आयु क्रम को छोड़ करके 7 कर्म की प्रकृतियों में उनका बंटवारा होता है। ये सब योग से ही होता है, इतना काम तो योग से हो जाता है। बंटवारा होने के बाद राग देश मोह के निमित्त से उनकी स्थिति पड़ती है कि वे कितने काल तक आत्मा के साथ रहेंगे। और फिर उसमें अनुभाग पड़ता है कि वो मतलब किस उनके उदय होगा तो किस टाइप का फल देंगे वो। ये 4 प्रकार के बंध हैं। तो अभी ये वो कह रहे हैं कि वो कर्म आए बंधे और बंधने के बाद सत्ता में रहते हैं। तो बंध और सत्ता कब तक, जब तक उदय में नहीं आए तो कम से कम आवाधा काल होता है एक, तब तक वो सत्ता में रहते हैं। और आवाधा काल पूरा होने के बाद में उनका उदय में आना शुरू होते हैं। तो जब तक पूरी स्थिति खत्म नहीं हो जाए तब तक क्रम से थोड़े 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 उनके सब कितना ये सब बंटवारा है शास्त्र में, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे अनेक समय के बंधे हुए एक समय में मिलकर एक पिंड बनता, उसको भी समय प्रबद्ध बोलते हैं। कितना समय प्रबद्ध खिरता है, एक समय प्रबद्ध बनता है क्या, और उससे जोड़ा करी जोड़ गुण हानि प्रमाण ऐसा शास्त्र में शब्द आता है। इतना प्रमाण हमेशा सत्ता में रहता है, एक गणित है उसका। तो अन्ना जी से समझ लेना, विस्तार से समझना हो तो। लेकिन आप तो मैंने थोड़ा इसलिए बताया इसे आपको मालूम पड़े। तो एक बंधे फिर सत्ता में रहे और फिर उदय में आए। तो वो कहते बंधते वक्त कर्म हमें सुख दुख देने में, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रदान करने में निमित्त भी नहीं, उपादान तो है ही नहीं कभी भी। लेकिन बंधते वक्त वो कर्म आगामी बंध का कारण नहीं बनता, इसलिए हमें उससे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सत्ता में पड़ा रहेगा। तो उसे लिखा है पृथ्वी पिंड समाना, वो पृथ्वी के ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है, कुछ नहीं है वो, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। कितना ही तीव्र कर्म तुम्हारे उदय में पड़ा हो, सत्ता में पड़ा हो और उदय में नहीं आ रहा तो उससे कुछ नहीं है। जैसे आपने बैंक से 10 लाख का कर्जा लिया और उसने आपको कह दिया कि 2 साल तक आपको नहीं चुकाना है, 2 साल के बाद इतनी इतनी किस्तें चुकाना है, तो 2 साल तक कोई बैंक वाला आपसे कुछ नहीं कर सकता। वो बैंक का पैसा लेके आप बिल्कुल लुटा दो, बाजार में बांट दो सब ला करके, क्यों? वो 2 साल तक आबाधा, आबाधा माने वो तुम्हें बाधा ही नहीं देगा और फिर बाद में किस्तें शुरू होंगी। ऐसा कर्म में भी है। तो कहते सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, बंद होते वक्त नहीं कर सकता, अब उदय में, तो उदय में तो कुछ करता है, कहते हाँ उदय एक देखो सत्ता होती है हजारों लाखों वर्ष की, और उदय होता है एक समय में, प्रत्येक समय में एक लिमिटेड चीज उदय में आती है, तो वो उदय में आएगी और अघातिया कर्म तो अपने आपको संयोग में निमित्त है बस, घातिया कर्म और बातों में है, विस्तार में नहीं जाता मैं, लेकिन आत्मा के भावों में है। तो वो एक समय आपने बचा लिया तो उदय में आके खिर जाएंगे, आपका समझो भोग हो गई नहीं, एक समय आपका उपयोग आत्मा में चला गया क्या, अब उस समय वो किसी पदार्थ का आपका वियोग हुआ, हो गया खत्म, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हुआ, और आगामी कर्म का बंध भी नहीं होगा। तो उदय में आकर के भी हर कर्म बंध में निमित्त बने ये भी जरूरी नहीं है। अब जो हमारा उपयोग के प्रयोगानुसार, तो हमारा उपयोग उधर जाता है और वो हमारा रागादी उसमें उदय में निमित्त आते हैं और उससे हम अनुरंजित होते हैं, तो उसमें जो रागादी भाव होते हैं वो बंध में निमित्त बनते हैं। तो हमें इतना बड़ा दे कर्म, कर्म ने परेशान किया, कर्म ने परेशान किया, इतना हमने रख रखा ना, कहते भैया कुछ नहीं है, वो तो एक लिमिटेड समय की बात है, आगे पीछे तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, ये बंदूक ताने खड़े हैं सामने आपके पुलिस वाले सेना वाले, अब आराम से बैठो सो उठो चलो, वे कुछ नहीं कर सकते, वो जब तक उन्हें कोई आदमी ऑर्डर नहीं देगा गोली चलाओ, तब तक वे गोली भी नहीं चला सकते, गोली होने से घबराओ मत, बंदूक में कितनी गोलियां भरी हैं कोई चिंता करने की बात नहीं है, समझिए ना, वो तो एक समय उन्हें ऑर्डर मिलेगा, पर उस समय तुम सुरक्षित रह गए, वहां नहीं हुए, अनुपस्थित हो गए, कहीं चले गए, बाहर हुए, घर में घुस, समझ गए आप, बस खत्म, निकल जाएगा समय, बस खत्म, वो बाद में बंद हो जाएगा, नहीं पर बंद करो, बंद हो, खत्म, बस बैठ क्या है, तो एक अपन ने हुआ खड़ा कर लिया था वो नहीं, तो कि नहीं है नहीं है नहीं है, और फिर भी जो होगा वो एक समय वो भी मात्र निमित्त होगा, यदि तेरी उपादान की योग्यता तेरा आत्मा अपने में चला गया तो काम खत्म, तो फिर कहीं बंद करता कौन है, ये जो अपन ने उस शिविर में समझाया था उसके बाद समझाया था उतनी वो बात बता रहा हूं मैं, तो कहा कि ज्ञान गुण का प्रणमन उसमें निमित्त है, ऐसा ही गाथा में लिखा, गर्व हो गया, आत्मा का ज्ञान गुण उसमें निमित्त है बंधन में, हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, ज्ञान तो बंध का कारण नहीं हो सकता है, हमारे तो बहुत शास्त्रों में पढ़ा है, अरे भाई तुम समझते नहीं हो, वो ज्ञान गुण का जब जघन्य प्रणमन होता है तब बंध होता है, यानी पूरा केवल ज्ञान हो तब बंध नहीं होता है, मन पूर्ण उसका पूर्ण पर्याय प्रकट हो तब बंध नहीं होता है, वो जघन्य प्रणमन होता है, मैंने वो स्वयं स्वरूप प्रणमन होता है ना तब बंद होता है, माने इसका मतलब है तेरहवें अनुष्ठान से नहीं होता है, दसवें अनुष्ठान तक जो हमारा राग रहता है वहीं तक बंद होता है, और तब तक ज्ञान गुण का जघन्य प्रणमन होता है। क्या क्या बात करते हो, जघन्य हो चाहे ज्यादा हो तो उससे बंद कैसे हो सकता है, हम कम जाने ज्यादा जाने लिखा है समन्त भद्र ने आत्मीमांसा में, ज्ञान गुण का प्रणमन बंध का कारण नहीं है, अज्ञानाते ध्रुवो बंध हो गया अनंतान्न केवली, यदि नहीं जानने से बंध होता होता तो गे तो अनंत है, और केवल ज्ञान हुए बिना कोई जान नहीं सकता, तो हमेशा बंध होता ही रहेगा, तो फिर कोई केवल ज्ञानी कैसे बनेगा, ऐसा लिखा है, हमें जची नहीं बात कि तुम समझते नहीं हो कि जब आत्मा का ज्ञान गुण का जघन्य प्रणमन होता है ऐसे जीव के राग अवश्य होता है, और राग बंध का कारण है, तो बंध तो राग कारण है, और तुम कह रहे ज्ञान, कभी गिरवाड़ी में अनेक अपेक्षाएं होती है, तुम समझो ये सब इसमें हैं, गाथाएं हैं, क्या ज्ञान गुण का अर्थ है, ज्ञान गुण का जघन्य परिणाम, और ज्ञान गुण का जघन्य प्रणमन माने क्या, उसके साथ होने वाला जो राग है वो बंद का कारण है। इस वजह से हमने ज्ञान गुण को बंद का कारण कह दिया। अब ज्ञान गुण भी बरी हो गया ना पूरा, अब वो राग रह गया बंद का कारण, बस अकेला वो उस वक्त जो राग हुआ वो बंद का कारण हो गया। तो अब इतनी सी बात, तो उन्होंने कहा भैया तो तुम कह रहे ज्ञानी के बंद नहीं होता, तो कहते वो ज्ञानी के बंद इसलिए नहीं होता ज्ञानी की राग नहीं। अब सुनो यहां तक आ गए कि ज्ञानी के राग नहीं इसलिए बंद नहीं होता। अब आपका शिष्य खड़ा है, निकालो आप अपना पेज निकाल लिया ना, 117वां खंड यहां खड़े हैं अपन। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम् द्रव्यसंत प्रत्यय संततौ कुतो नराश्रवो ज्ञानी नित्यं वेवेति चेन्मति। चेन्मति क्या है, न्याय की भाषा है। उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो आंख मीच के वो अर्थ कर देना। जैसे ननु ननु लिखाओ समझ लो कि शंकाकार प्रश्न कर रहा है, तथा ही लिखाओ तो समझ लो उसी बात को अब विस्तार से समझाते हैं, उसका ऐसा अर्थ होता है। अब ये चेन्मति कि यदि कोई ऐसा सोचता हो तो, किसी की बुद्धि ऐसी हो तो, कोई ऐसा कहता हो तो, क्या इति चेत मति, किसी की बुद्धि इति चेत ऐसी हो, कैसी हो कि सर्वस्याम नेव जीवत्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, कि द्रव्य प्रत्यय के द्रव्य कर्मों की संतति निरंतर विद्यमान है, एक क्षण को भी वो बंधने का काम रुका नहीं है। ज्ञानी के वे काम सब मौजूद हैं जो बंध के कारण हैं, और तुम कह रहे हो उसे बंध नहीं होता। क्या सर्वस्याम जीवत्याम द्रव्य संत्य संततौ, द्रव्य प्रत्ययों की संतति पूरी की पूरी विद्यमान है, कि तुम्हें ज्ञानी को दुख नहीं होता, वो धमाधम पड़ रहे हैं वहां और वो रो रहा है बेचारा चिल्ला रहा है और तुम कह रहे कोई दुख नहीं होता। ऐसा हो गया ना, देखो हिंदी में द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण और फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। देखो बनारसीदास जी ने करस्टिका का आधार पर, यानी सारी चीज विद्यमान है क्या, अज्ञानियों जैसी परिणति विद्यमान है तो कैसे विद्यमान है, तो कलष्टिका में उन्होंने खोला है अर्थ उसका, और उसके आधार पर बनारसीदास जी ने एक छंद बनाया है। वो छंद पढ़ते हैं उसके ऊपर अपने तुम्हारा अनुशीलन है ना, उसमें वो कलष्टिका का अंश भी लिखा है, पढ़ लेना। दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन बनारसीदास कहां से लाए ये बात, ये कलष्टिका से लाए। कलष्टिका वाले कहां से लाए, अपने दिमाग में से लाए। उनने इस छंद में से ये बात अर्थ समझा, सबसे पहले कलष्टिका उनने लिखी, और उसके पहले कोई ऐसा अर्थ नहीं मिलता है। इस पे गुरुदेव कलष्टिका पर इतने रीझे थे ना वो, और बनारसीदास जी ने समय सार नहीं पढ़ा था, बस कलष्टिका पढ़ी थी समय सार के नाम पर, और उससे ही उनका जीवन बदल गया था। देखो छंद पढ़ो भी नीचे, जरा अच्छी तरह से पढ़ो, कोई गा करके इधर आ जाओ स्टेज पे। जो जग में बिचरे मनि मंदे सदा भरते बुद्धि ते सो, देखो बनारसीदास ने ये अनुवाद किया, हमने ये अनुवाद किया, द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, तो हमारे सामने बनारसीदास का तो मौजूद था ना, हम भी तो वैसे बना सकते थे ना अभय कुमार जी। बनारसी दास को तो राजमल जी का था, और राजमल जी को किसी का नहीं, उनकी तो ओरिजिनलिटी है। लेकिन हमारे पास तो दोनों ही मौजूद थे ना, हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो हमने ऐसा छंद क्यों नहीं बनाया? क्या मनीष समझ के भैया, हम तो उस छंद से बंधे हैं, हम छंद का पद्यानुवाद कर रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी उस छंद तक है। उस छंद में ऐसी बात स्पष्ट नहीं लिखी, उसमें लिखा है सर्वस्याम जीवंत्याम द्रव्य प्रत्यत संतत तो द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, पर हमने कह दिया हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। कुतो निराश्रवो ज्ञानी, फिर भी ज्ञानी निराश्रव क्यों है? फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण, हमारा काम हो गया, हमने छोड़ा तो कुछ नहीं है। लेकिन वो बात हमने नहीं की, उन्होंने की। क्या कह रहे हैं देखो, अब एक पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़े, जैसे मैं कभी मेरी भाषा ऐसी है लोगों को अटपटी लगती है कि उसका बाहर की सारी प्रवृत्ति मिथ्या दृष्टि जैसी, मिथ्या दृष्टि जैसी कैसी हो सकती है? क्या मिथ्या दृष्टि जैसी तो हो ही नहीं सकती ना, ज्ञानी की परिणति में और सम्यक्ता की परिणति में अंतर तो है ही, लेकिन जो बाहर से हमें दिखाई देती है उसका मिलान करें तो मिथ्या दृष्टि जैसी दिखती है। अंतर की परिणति की बात तो अपन कर नहीं रहे, ख्याल में आई ना? तो क्या क्या चीज का मिलान कर रहे हम? वो शिष्य जो है वो क्या क्या चीज का मिलान कर रहा है कि ज्यो जग में विचरे मति मंद माने अज्ञानी, ये तो मंद बुद्धि होता है, लेकिन यहां पर लेना पहले गुणस्थान वाला कि ज्यो जग में विचरे मति मंद, जैसे अज्ञानी लोग विचरण करते हैं, कैसे विचरण करते हैं? वे स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं अज्ञानी। सदा बरते बुध ते सो, वैसे ही हम ज्ञानियों को भी देखते हैं। क्या अब समझ आए ना? कितना क्लियर है इसका अर्थ भी मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से जो तो लिखते तो अपना बहुत काल के लिए हैं, कितने कितने जीव हैं, कल वो नहीं पढ़ पाएंगे इसको, 400 वर्ष पुरानी भाषा बहुत लोग नहीं समझते। ये छंद तो सरल है, लेकिन कई छंद बहुत कठिन होते हैं, है ना? नियम बना दिया कि हर एक का अर्थ लिखना, तो लिखना अपने तरीके से लिखा। लेकिन और भी पुराने अर्थ किया है लोगों ने, लेकिन अपने सीधी सरल भाषा में, कहीं ऐसा ना हो कभी कभी ऐसा हो जाता है अर्थ लिखते हैं कि छंद से ज्यादा कठिन हो जाता है। मैं आपको सच बोलता हूं कि जब नीचे हम आत्मख्याति का और छंदों का अर्थ पढ़ते हैं, अभय जी अनुभव करते होंगे, तो कभी कभी नीचे हिंदी से समझ में नहीं आता है, पर जब मूल संस्कृत पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो हमें मालूम पड़ता है, क्यों संजीव? तो मालूम पड़ता है कि इसमें कितनी कमजोरी है, तब अंदर से फीलिंग होता है कि इसको भाई जो संस्कृत नहीं जानते होंगे उनको तो समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए अपन को ऐसा लिखना कि जिससे सबकी समझ में आए। कल में ना अज्यो जग में बिचरे मति मंद स्वच्छंद तथा सदा भरे ते बुद्धि ते सो, अर्थ आ गया ना समझ में? एक पंक्ति का चंचल चित्त, अब कैसो उसको खोल ले कि जैसा चित्त की चंचलता अज्ञानियों में देखी जाती है उनमें भी वैसी दिखाई देती है। मन की हालत ऐसी चंचल चित्त असंजत बैन, और वाणी में भी गालियां बख्शते थे कि हमने ज्ञानियों को असंजत बैन, बैन माने वाणी, वो भी असंयत होती है। ठीक है, चंचल चित्त असंयत बैन और शरीर स्नेह जथावत जैसो, और शरीर का सबसे प्रेम भी वैसे ही दिखता है। जरा सी बीमारी हो तो दौड़ के डॉक्टर के पास भागते हैं, इलाज कराते हैं, ये करते हैं, क्यों? चंचल चित्त, देखो मैं इस पर लट्टू हूं बनारसी दास के छंद में, तब तो मैंने यहां लिखा है, मैं इसलिए बनारसी दास को मैं लिखता हूं भावानुवाद, लिखा ना ऊपर भावानुवाद, इसका भाव स्पष्ट किया। उनने कोई छंद को नहीं पकड़ा, छंद में ये कुछ है ही नहीं, क्यों चंचल चित्त असंजत बहन, ये बात मूल छंद में कहा है बोलिए। उनने तो इतना कह दिया फिर अज्ञानियों जैसी ख्याल में ना, लेकिन एक इनने खोली और शरीर स्नेह यथावत जैसो है ना भोगे संजोगे, भोगों का संजोग हमसे ज्यादा दिखता है कभी कभी, तो चक्रवर्ती है छान में हजार पत्नियां हैं, वो परिग्रह संग्रह है, वो परिग्रह का संग्रह क्यों, परिग्रह तो अपन लोग भी जोड़ते हैं देखो, लेकिन उतना तो नहीं चक्रवर्ती जितना, और उस कीमत पर भी नहीं घबराना नहीं भाई साहब, किस कीमत पर कि भाई को मारना पड़े तो भी कि पंडित जी तुम्हें पता नहीं है दुनिया कहां पहुंच गई, पहुंच गई होगी तब भी वहां तक नहीं पहुंची मेरे ख्याल से, अभी बहुत बहुत बचे हैं, क्यों जगह जगह जाकर के देखो थोड़ा सा और खोलूं, अकेले भाइयों की बात नहीं है सारे रिश्तेदारों की बात है, चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां होती हैं दादा ये कहां से आई हैं, ये सब उन 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं की लड़कियां हैं जो उनके अंडर में होते हैं, उसमें 32,000 तो मिले छंद की हैं, मिले छों को भी नहीं छोड़ा, अब मिलेच की व्याख्या मैं नहीं कहना चाहता समझ में आया ना, तो सब रिश्तेदार हो गए ना, सब ससुराल है वो सब ससुराल है, उनकी लड़कियां उनकी बहनें उनको ले आए तो सब रिश्तेदार हो गए ना, उनने अकेले भाइयों की संपत्ति नहीं छीनी, अपने रिश्तेदारों की ससुराल वालों की सारी संपत्ति छीनी, अकेले भाइयों को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, सबको गुलाम बनाया, बनाना चाहते नहीं थे बनाया, क्यों तो भले व्यवस्थापक के लिए उन्हीं को सौंप दी, क्यों व्यवस्था के लिए सौंप दी, लेकिन माल तो इनके ही है ना, इन्हें भी व्यवस्थापक तो चाहिए ही थे ना, जब इस गवर्नमेंट ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था तो सारे कर्मचारियों को थोड़ी निकाल दिया, तो एक ऊपर वाले को निकाला मालिक नाम के प्राणी को, बाकी काम तो हम उनने ही किया, और उनको भी कहा कि आप संभालो, कौन संभालेगा हमारे यहां, बस आपको तनख्वाह मिलेगी सबसे ज्यादा, और जो सारी सुविधाएं आज तक आप भोगते रहे हो वो सब भोगो, ये मीलों का राष्ट्रीयकरण किया ना कपड़े वपड़े के मील, तो ये सब उसी बंगले में रहो, वैसी गाड़ियां दौड़े सारे आपके नौकर साहब की आपकी आज्ञा में रहेंगे, आप जितना खर्च करना चाहो अपने पर करो, सारी सुविधाएं हैं, छीना क्या है, बस अब ये राष्ट्रीय संपत्ति आपकी नहीं है, ये राष्ट्रीय है, यही तो यही भरत चक्रवर्ती ने किया, सब चक्रवर्ती ऐसे ही करते हैं, अब परिग्रह संग्रह का अर्थ समझ में आया कैसा, किस कीमत पर, भोग संजोग परिग्रह संग्रह, इसलिए तो मुझे भरत चक्रवर्ती पे उपन्यास लिखने की भावना है ना, क्या पता इस भव में पूरी होगी कि नहीं होगी, लोगों के गले पचेगा नहीं मैं जानता हूं, हे भैया रत्नाकर कवि को समाज बाहर कर दिया था बेचारे को हमें क्या करेगा, जब तक हम रहेंगे तो करेगा भोग संजोग परिग्रह संग मुह विलास कर जहां ऐसो, ऐसा मुह का विलास होता है, मोहिनी कर्म के उदय में माने चरित्र मुह, चारित्र मुह के उदय में ऐसी दशा होती है, जब कोई ऐसा मार्मिक छंद आता है तो मेरे आगे बढ़ा ही नहीं जाता है, क्या अब पूछत शिष्य अचारज सो के सम्यक बनते निराश्रव कैसो, अब सम्यक दृष्टि निराश्रव है ये मेरी समझ में नहीं आता, देखो अब अपन वो भी पढ़ लेते हैं राजमल जी को, जिनने सबसे पहले इतना लिखने की हिम्मत करी। यानी ये समझा सबसे पहली महिमा की बात है, और दूसरा लिखने की हिम्मत करी ये दूसरों की महिमा की बात है। और मानो आप जानते थे ये कैसी संयोगों में रहते थे जिनने ये लिखा है, अपने पास के थे नहीं, जयपुर के ही बैराट नगर के, बैराट बैराट बोलते ना, अलवर के रास्ते में मिलता है ना, अलवर जाते हैं ना तो अपन यहां से मुड़ते हैं कहां से, शाहपुरा से, तो वहां पे 8-10 किलोमीटर पे आता है, वहां रहते थे। वहां भट्टारक की गद्दी थी, वो भट्टारक की गद्दी के भट्टारक के आश्रय, भट्टारक सारा उनका खर्चा मरता भट्टारक उठाता था, और ये सब वहां रहते थे। वो भट्टारक के मठ के पंडित थे, अब आप समझ आए ना, और भट्टारकों की कैसी हालत थी उस वक्त, ये सम्राट से कम नहीं होते थे, वो चाहे तो 2 मिनट में जान से जोड़वा दें, चाहे जो कुछ करवा दें, लेकिन उसमें बैठ करके और उन्होंने ये सब कलश्टिका जैसी चीजें लिखी, पंचाध्यायी जैसा ग्रंथ लिखा। पढ़ते हैं जरा उनको, उनकी महिमा। कोई आशंका करता है कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वथा निरासव कहा है, और ऐसा ही है, मैंने कहा है तो ऐसा नहीं कि वैसे ही कह दिया है, और वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है, परंतु ज्ञानावरणादि द्रव्य पिंड जैसा क्या तैसा है, ज्ञानावरणादि कर्म 8 कर्म वहां मौजूद है, वैसा ही विद्यमान है, और उस कर्म के उदय में नाना प्रकार की भोग सामग्री भी जैसी थी वैसी ही है, उस तथा उस कर्म के उदय में नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है, इंद्रिय संबंधी इंद्रिय शरीर संबंधी भोग सामग्री जैसी थी वैसी ही है, सम्यक दृष्टि जीव उस सामग्री को भोगता भी है, इतनी सामग्री रहते हुए निराश्रपना कैसे घटित होता है, ऐसा कोई प्रश्न करता है। तो क्या छोड़ा इनने, तो पद्यानुवाद के अलावा क्या किया, ये जो उन्होंने गद्य में लिखा था उसको उन्होंने कविता में बांध दिया। अब मैं आपसे जो कह रहा था ना कि राजमल जी की महिमा प्रणाशदास से भी ज्यादा क्यों, अपन अपनी बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष अपन को मिले, उनकी सबसे ज्यादा महिमा की बात यह है कि इस भव में उन्हें कोई समझाने वाला गुरु नहीं था, ये तो बिल्कुल बहुत स्पष्ट और नक्की बात है। क्यों, और उनका अध्ययन जितना था 5वीं 6वीं क्लास होंगे, 10वीं में इसमें बाद में क्या फर्क पड़ता है, मतलब कोई वे और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और हिंदी भाषा का भी वहां कोई ऐसे पठन पाठन की व्यवस्था हो ऐसा नहीं था, वो गुजराती मीडियम में ही उस एरिया में पढ़े होंगे जहां पैदा हुए वो, जहां उनका पढ़ना पालन पोषण होगा। उनने बिना गुरु के, और ये कलश्टिका जो आज पढ़ी आपने ये तो पूजन जी का अनुवाद है, उधर राजमल जी की भाषा देखो 400 वर्ष पुरानी भाषा, एक अक्षर समझ में नहीं आएगी, सबसे पुराना गद्य है ज्ञानियों का, ज्ञानियों का नहीं सारे हिंदी साहित्य में इतना पुराना गद्य नहीं मिलता है, जब हिंदी में गद्य था ही नहीं, पद्य था अकेला उस समय। उन्होंने उस कलश टीका को उस भाषा से अर गुरुदेव ने समझ, वो आत्मा की बात समझ, कितनी कितनी महान बात है, कितनी महानता है, उस महानता की कोई चोट कर सकता है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप क्या मानते हैं, उन्हें एक या एक कुछ नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि जब हम उनका प्रवचन सुनते हैं और जो वो जिस तरह की बातें निकालते हैं, और वो जिस तरह से उन्होंने जिस योग्यता में बिना गुरु के जो निकाला है माल, वो हमें 100% सत्य लगता है, है सत्य, और उनने निकाल लिया, हम इस पे उनकी इस बुद्धि पे दीजिए, बोलो क्या कहना है आपको, हम समर्पित हैं उनको यदि पूरी तरीके से, तो हम इस बात पर दीजिए हैं। हम कहते हैं हमारी होड़ आप लोग ऐसा मत समझना, कोई नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता कि वो नीचे तो हैं उन पर, हमसे ज्यादा समर्पित हैं, लेकिन वे उनके बाहर के ताम झाम से पुण्य के उदय से रींझे और हम उनकी उस ज्ञान की महिमा से रींझे। भाईचंद जी, अभिमान के लिए नहीं कहता हूं, यदि कोई दूसरे लोग ऐसे हैं तो हम उनके लिए उनके चरण स्पर्श करने को तैयार हैं, किसी के अपमान की बात नहीं है। वो जो बातें जिन पर आप रींझे हैं वो भी बहुत महान हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी रींझने लायक हैं। डॉक्टर साहब दमन वाले क्या अरुण भाई, हम उसका उन लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि उनके पास पूरा भव का माल था, हम भी कहते हैं, हम प्रशंका करते हैं लोग कि आप नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि जे उन्हें यहां कोई बताने वाला मिला ही नहीं और इन शास्त्रों को पढ़ करके उनने ये निकाल लिया, तो ये उनके बाद पूरा भव की कमाई के अलावा और कोई की गारंटी से होगी, हमें इसमें कोई रस नहीं है कि वे क्या थे और क्या होंगे। लेकिन उन्होंने आत्मा की बात बहुत गहराई से कहीं सुनी थी, समझी थी और वो उनके पास थ्योक्सम ज्ञान में मर्यादा में मौजूद थी। और न सही जाति स्मरण कोई भी घटना बताएं, लेकिन उनकी स्मृति में वो आई ना, हम मानते हैं लेकिन इस कारण मानते हैं। तो नहीं मानने की बात आपकी क्यों चलती है, इसलिए चलती है क्योंकि जिन कारणों से आप मानते हो उन कारणों से हम नहीं मानते। हम किसी ने कहा और हमने सुना इसलिए नहीं मानते हैं, समझे, हमने सुनकर और पढ़कर के नहीं माना, हमने उनकी ज्ञान की उस किरण को देखा है उससे माना है हमारे हृदय में, आप समझ रहे हैं ना, जिसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। जब कोई आदमी हम उंगली उठाता है हमारी श्रद्धा पर तो हमको थोड़ा सी उत्तेजना आ जाती है, उस सात्विक उत्तेजना हम कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उसके लिए बहुत बढ़िया बताया है, तेरा सिर हिल गया, बता कहां बताया, क्या बताया, क्यों मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना है, कौन छठवें सातवें गुणस्थान वाले थे, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं जो ग्यारहवीं बारहवीं क्लास पास थे और एमए वालों को पढ़ाते थे बनारस यूनिवर्सिटी में, समझ गया ना, और उनके अंडर में तो सैकड़ों ने पीएचडी की, उन पर भी 10-20 पीएचडी हो गई होंगी। उनने ये बात कहां लिखी, मनीष क्यों गर्दन नीची करता है, नहीं पूछूंगा तेरे से, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है ना, पढ़ाता है हिंदी साहित्य, इसलिए डर लगता है इसे कि पूछेंगे दादा। क्रोध नामक लेख में देखो, ये सात्विक क्रोध कहते हैं कि नहीं, जैसे राम जी का क्रोध कहते हैं ना, वो एक कहते हैं कि एकदम ज्ञानियों पर अन्याय हो रहा हो तो वो, और तुम्हें क्रोध न आए, वो क्रोध सात्विक क्रोध है, वो ऐसी भाषा देते हैं। जैन धर्म तो कहता है क्रोध किसी के कारण हुआ हो, क्रोध बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात वहां लिखी है कि वो सात्विक क्रोध है, उसको उन्होंने तामसिक क्रोध दिया, कासात्विक क्रोध, ऐसे भेद उनने किए हैं। तो वो मैं कह रहा हूं गुरुदेव की महिमा आपको ख्याल में आई कि इस कलश्रिका को पढ़ के उन्होंने चीज निकाल ली, तो ये अद्भुत बात है, गुरुदेव के लिए भी और राजमल जी के लिए तो है ही, तो राजमल जी ने तो उनके सामने तो ये कलश्रिका भी नहीं थी, क्यों, उनने तो इस संस्कृत के छंद में से निकाला, सर्वस्याम एव जीवत्याम द्रव्य संत प्रत्यय संत कुतो आश्रवो ज्ञानी नित्यम वेति चेन्मति, इस छंद में से ये बात निकाली है। और जो बनारसी दास की महिमा इसलिए है अब मैं इसलिए कहता हूं कि वो धन्य इसलिए हैं कि उनने ये बात समझ ली, पकड़ ली। अरे भाई, जिनने अपने आप निकाल ली वे भी धन्यवाद के पात्र हैं, और जिनने उस बात को पकड़ लिया वे भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं है। क्यों क्यों बोल भैया शिखर? लाभ तो दोनों को बराबर ही हुआ, माल हाथ में आ गया ना दोनों के, उनको वैसे आया और इनको ऐसे आया, लेकिन चीज तो आ गई ना, घाटे में कहां रहे? अब ऐसे पे अपना अपने पे घटित करो कि पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसे संयोगों में और इन अपने कुंद कुंद के शास्त्रों को पढ़कर, उस भाषा में जो थे झूंडारी उपरानी भाषाओं में पढ़ करके वो मर्म निकाल लिया, तो वो तो कितने महिमावंत हैं, समझ में आए? समझे ना, उनकी तो कल्पना हम कर नहीं सकते। लेकिन हम भी कम भाग्यशाली नहीं है, हम माने वे लोग कि जिनने गुरुदेव के बताने पर समझ लिया। क्यों भाई साहब, क्यों छाबड़ा जी बोलो? क्यों? लाभ तो दोनों को बराबर हो गया, माल तो दोनों के हाथ में एक सही आ गया। क्यों साहब? काम जो होना है उससे काम तो दोनों को ही हो जाएगा, लाभ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। वे सच्चे अन्नाई हैं गुरुदेव के। कोई माई का लाल ऐसा तो आए कि इसके पीछे नेछावर हो उन पर, स्वामी जी पर, और इन बातों में गड़बड़ी हो तो अपनी जान की बाजी लगाकर खड़ा हो जाए। इनके लिए तो किसी को नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, चाहे जैसा तोड़ो मड़ो लो उनकी तत्व ज्ञान को। बस ये एक आता है तो थोड़ा सा अध्याय करता है, कुछ भी तोड़ता मरोड़ता है, 10-20 मूर्ख उसके साथ खड़े हो जाते हैं, एक आध करोड़पति मिल जाता है, बोले उसके उसकी चल निकलती है दुकान। क्यों अभय जी, ऐसा है क्या? नहीं है, बोलिए कितनी दुकानें खुल गई? उनसे ही पूछा, उन्हें क्या समझा क्या नहीं समझा, क्या समझा नहीं समझा। कलश टीका पे गुरुदेव नहीं जीता, अपन भी कलश टीका पढ़ाने लगे। नहीं तो ऐसा पढ़ गया अपन, कहते कलश टीका का क्या, कलश टीका की महिमा इतनी अपन को आती? अरे कलश टीका के जो चीजें हैं अभी कहां है बताओ उसके पहले। अब 2000 वर्ष में निकालो कि कल इनने कहां से ली होगी, यदि कहीं मिल जाए तो मिल भी सकती है, कहीं किसी ने किया होगा, नहीं तो उन्होंने खुद भी समझ ली कैसे ही हो। लेकिन ये सही है ना, ये हमारी विवेक और बुद्धि को ये तो दिखता है कि नहीं, ये बात 100% सच्ची है। अब एक दफे छंद शांति से पढ़े। अब जो जग में बिचरे मति मन ने, तो छंद सदा भरे ते बुद्धि ते सो। ठीक है, अब ये हो गया अपना आगे। अब गाथाओं पर जाओ, उत्तर। अब उत्तर पर जाते हैं अपन। देखो 173 से 76वीं गाथा निकालो। एक कुंदकुंदाचार्य देव का उत्तर है, नीचे अर्थ पढ़ेंगे, फिर बनारसीदास का भी आएगा, कलश टीका में भी आएगा, अपन ने भी आएगा, गुरुदेव का आएगा, सब अपन ने इसमें बराबर पूरा अपन पढ़ेंगे समझेंगे शांति से। आप भी घर पर स्वाध्याय करना लेकर के, समझे ना, बाकी समय यहां वहां खराब मत करना, है ना। देखो सब्बे पुब्ब निबद्धा दुपत्या अत्य सम्मिदे ठसे, सदृष्टियों के मोटा मोटा अर्थ तो ख्याल में आपको आया होगा। एक बात तो इसमें मार्मिक पहले समझ लो, जिससे आपको इसका अर्थ समझने में कोई असुविधा नहीं हो। जो अभय जी ने कहा था, आश्चर्य थोड़ी हुआ आपका, कुछ हुआ कल शाम को? हाँ, कल शाम को उसमें कहा था कि हम बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सम्यक दृष्टियों को बंद नहीं होता है और मिथ्या दृष्टियों को होता है। तो वो अपन क्या समझते हैं कि जो बंध मिथ्या दृष्टियों को होता है वो बंध सम्यक दृष्टियों को नहीं होता। मिथ्या तो राग आदि का लगा, राग आदि विद्यमान है, लेकिन भैया मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व संबंधी राग आदि विद्यमान है और उनसे बंध की बात है, और सम्यक दृष्टि के वे राग आदि मिथ्यात्व को भी राग बोलते हैं, वो विद्यमान ही नहीं है, इसलिए बंद नहीं होता। सीधा न्याय है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और जो बंद नहीं होता तो उसको यहां बंद कहा है, बाकी रागादिक होते हैं उनको बंद नहीं कहा। इतनी सीधी सच्ची बात है। लेकिन ये बहुत विवाद चलता है, समय से कह रहे हैं बहुत झगड़ा हुआ था। आपको पता नहीं, एक दफा उज्जैन वालों का शिविर था, वो इतना हुआ था कि उसके बाद फिर मेरा उज्जैन वालों के शिविर में जाना हुआ ही नहीं। क्या पहला दूसरा तो एक आध दो दफा क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मुद्दा यही था कि बंद नहीं होता। तो मैंने कहा कि भैया कि वो जो बंद नहीं होता उसका तो कारण ही वहां मौजूद नहीं है, इसमें कौन सा अन्याय हो गया? वो अनंतानबंदी और मिथ्या संबंधी जो 41 प्रकृतियों का बंद नहीं होता तो सम्मति सी के वो कारण ही विद्यमान नहीं है। हमें मिथ्या ऋषि को होता है, सम्मन ऋषि को नहीं होता है, वो सम्मन ऋषि वैसे भोग होता है, लेकिन वो भोग वाला बंध नहीं है भाई साहब। वो भोग वाला बंध जैसा मिथ्या ऋषि को होता है, सम्मन ऋषि को भी होता है। वो 96,000 शादियां करी, वो शादियों वाला बंध है, उससे जो बंध होता है वो तो होता है। इतनी छोटी साधारण बात भी समझ में नहीं आई, वो तो प्रतंसार की बात है। प्रचन सार की नहीं, समय सार की बात है, पता सुन है। और प्रचन सार की सही तो प्रचन सार भी कुंद कुंद का ही है, उस पर भी टीका अमृत चंद्र की ही है, उस पर भी गुरुदेव श्री के प्रचन है। जैसे मैं प्रचन सार माने हे तत्व, वो प्रचन सार में वो बात करते, ऐसा प्रचन सार की ऐसी बात। अब मैं बराबर मैंने उस बात को चालू रखा जो आपने तर्क से युक्ति से सिद्ध करता हुआ, और सामने वाले भी सब तालू रखा कि उनको नहीं 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 ये बात ऐसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो चल वो जो हुआ हुआ होगा, वो हुआ होगा। अब कितना कितनी न्याय संगत बात है कि उन्हें बंद नहीं होता, माने पहले गुणस्थान में जो बंद होता है मैंने चौथे के पहले, वो बंद उन्हें नहीं होता क्योंकि वे चौथे में न अज्ञानियों को होता है क्योंकि वे पहले में, उसके कारण विद्वान है, उसके कारण विद्वान नहीं है। और हम क्या करते हैं, बंद तो वो पकड़ लेते हैं, कौन सा रागादि तो वो पकड़ लेते हैं जो सम्य ऋषियों के मौजूद है, इसलिए कहते कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। अब हमें लगता है ये अन्याय है कि वो ही ऐसा करे मिथ्या दृष्टि वही करे तीन साधियां करे तो उसको तो बंद होता है, और संबंध दृष्टि 96 करे तो 1000 करे तो उसे नहीं होता है, अपन को अन्याय दिखता है। ये भैया वो उन्हें तीन शादी करने की वजह से बंद नहीं हुआ है, वो जिद जिद की बात कर रहे हैं अपन, वो तीन शादियों वाला बंद हुआ है, वो अलग हुआ है, और उसे तीन शादियों का ही लगे घबरा हुआ लगता होगा तो मन जो राग आदि के हिसाब से, और उसे 96 का लगेगा। ऐसा नहीं है, चक्रवर्ती यदि गृहस्थी में मरे वो 96,000 पत्नियों के साथ तो गारंटी से नरक में जाता है, और नरक भी छोटा मोटा नहीं, सातवां, क्योंकि वो साधारण आदमी थोड़ी है, पहले दूसरे में जाएगा तो सातवां में क्यों जाता है, क्योंकि आठवां नरक में है। आपको याद है जब भी ये बात मैं करता हूं तो एक घटना मुझे याद आती, किसी ने सुनाई थी, आप लोगों को भी याद आ गई होगी, लेकिन मैं सुनाए बिना रहूंगा नहीं। हुकुमचंद सेठ के इंदौर में 7 मील थे, हुकुमचंद मील, राजकुमार मील, मालवा मील और किन्हीरा मील, ऐसे बहुत थे। फिर एक और 8वें मील की प्लानिंग चली, तो इंजीनियरों को बुला करके सब मीटिंग चलती थी, क्यों छापरा जी सब बात चलती थी, तो वो सेतानी जी को पता चला कि क्या हो रहा है, तो सेतानी जी ने सेठ जी से पूछा क्या हो रहा है, क्या क्या ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों बार बार आपका ये खाना में लेट हो जाते हो रोजीना, ये क्या हो रहा है। कि वो इंजीनियर लोग आए हैं ना बाहर से, वो सब अंग्रेज इंजीनियर लोगों का समय कीमती है, तो क्या के लिए आए, क्या हो रहा है, कि ये 1/8 मील खुल रहे हैं, तो उसकी सब प्लानिंग लेटेस्ट डिजाइन का खोलेंगे तो हो रही है। तो सेतानी ने कहा सेठ जी नरक साथ ही होते हैं, सेतानी के इस वाक्य ने वो 8वां मील खुलने से रुक गया। तो भैया वो जो मिथ्या दृष्टि का जिसमें अपराध है, ऐसा तो ही चक्र पे दिए जाते नरक में, और भी तो बहुत जीव है नरक में जाने वाले, संबंधी तो जाते ही नहीं, मिथ्या दृष्टि जाते हैं ना बाकी के, तो काल में आई ना, तो बहुत जीव है वो भी बांधते हैं, लेकिन जिस पर इतने से न्याय है कि जिस कर्म जिस वजह से जो कर्म बनते हैं ना वो कारण है ना वो कार्य है, तो खत्म होगा संबंधियों के, अब मिथ्या दृष्टियों के कारण भी मौजूद है और कार्य भी मौजूद है। इतनी बात आप विवेक से ध्यान में रखेंगे तो बाकी सारी अपेक्षाएं आपको स्पष्ट हो जाएंगी, बाकी जिसको अपन कल खोलेंगे।